नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकायुची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सोल में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कल होंगी शामिल। भारत ने पाकिस्तान के फारूखाबाद में स्थित 125 साल पुराने ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की। यूक्रेन की सेना ने एक सप्ताह में लगातार दूसरी बार रूस की प्रमुख ऊफा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से जारी। और अब समाचार विस्तार से। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारत और मलेशिया ने आज नई दिल्ली में 12वीं उप समिति की बैठक के दौरान द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के पहलुओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक में सैन्य आदान प्रदान, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री सहयोग सहित विभिन्न रक्षा गतिविधियों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने सोमनाथ घोष को मलेशिया में देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। श्री घोष 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वे वर्तमान में शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं। भारत ने पाकिस्तान के फारूखाबाद में स्थित 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुद्वारे को ध्वस्त किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों या विस्थापित न्यासी संपत्ति बोर्ड की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने पर भी चिंता जताई। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। यूक्रेनी सेना ने एक सप्ताह में दूसरी बार रूस की प्रमुख ऊफा तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज कहा कि यूक्रेन ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व में रूस के पेंजा क्षेत्र में मिसाइल घटकों का विनिर्माण करने वाले एक संयंत्र पर भी हमला किया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर बताया कि ऊफा रिफाइनरी रूस के सबसे बड़े लुब्रिकेंट उत्पादों में से एक है और यूक्रेन से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। यूक्रेन ने दावा किया कि ड्रोन हमलों ने रूसी बढ़त को धीमा कर दिया है। रूसी अधिकारियों ने हमलों की पुष्टि नहीं की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 16 रूसी क्षेत्रों क्रीमिया और आजोव सागर और काला सागर के जल क्षेत्र में 179 यूक्रेनी ड्रोनों को रोकने की सूचना दी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। मंत्रालय ने कहा कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 घायल हो गए थे। पाकिस्तान द्वारा किए गए इन हमलों के बाद अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत और पाकिस्तान के बीच 2008 में हस्ताक्षरित वाणिज्य दूत संपर्क समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी सूचियों का आदान प्रदान हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। उन्होंने भारत की महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इसमें भारत को वर्ष 2047 तक 25 से 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। ये वृद्धि नवीनतम पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत की गई है। इसके अंतर्गत नए बदलाव 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब ₹2,500 होगी। 60 पृष्ठों वाला साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की लागत अब ₹3,500 निर्धारित की गई है, जबकि तत्काल योजना के तहत ये ₹6,000 होगी। 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्रतिस्थापन साधारण पासपोर्ट जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ढाका विश्वविद्यालय के आधुनिक भाषा संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों के कल से शुरू होने वाले 9 दिवसीय दौरे के लिए एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह दौरा ICCR और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की संयुक्त पहल है। इसका आयोजन ICCR के छात्र आगंतुक कार्यक्रम 2026-27 के तहत किया गया है। प्रतिनिधिमंडल भारत के कुछ प्रमुख संस्थानों में अकादमिक और साहित्यिक आदान प्रदान के एक कार्यक्रम में भाग लेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंदर कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कल शामिल होंगी। भारत ने पाकिस्तान के फारुखाबाद में स्थित 125 साल पुराने ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की। यूक्रेन की सेना ने 1 सप्ताह में लगातार दूसरी बार रूस की प्रमुख उफा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और फीफा फुटबॉल विश्व के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड का मुकाबला डीआर कांगो से जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।